ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के इस ओम शांति भवन के हॉल में बहुत प्यारी प्यारी माताएं बैठी हैं। माताएं हाथ खड़ा करो और सेवाधारी माताएं हाथ खड़ा करो। देखो सेवाधारी माताएं बहुत प्यार से सेवा करती हैं, तो अभी और सेवा करनी है। तैयार हैं जो माताएं सेवा करने के लिए तैयार हैं वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। अभी आप नीचे जाओ टोली किचन में, वहां पर आपको टोली भी बनानी है, प्यारे बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे। और बाबा तो हमेशा कहते हैं ये माताएं कौन हैं, शेरनिया हैं, शक्ति हैं, हर समय अथक सेवा करती रहती हैं, तो इसलिए इनके लिए ताली बजाओ माताओं के लिए। अच्छा माताएं सब खड़ी हो जाओ जो टोली बनाने के लिए जाएंगे, खड़े हो जाओ। जल्दी से हॉल में जाओ, और भी कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। टोली बनाने में जो भी मदद करना चाहे वह माताएं नीचे जाएं, टोली बनाने में मदद करें। ये देखो कितनी अथक सेवाधारी हैं, और ये टोली बनाती हैं बाबा के प्यार में, और सब प्यार से स्वीकार करते हैं। मधुबन की टोली तो हर एक को लगता है हमको मधुबन की टोली मिले, मधुबन की टोली मिले, लेकिन टोली बनाना बहुत कितना बड़ा काम होता है। बहुत काम होता है टोली बनाने का, बहुत प्यार से धीरे धीरे एक एक लड्डू बनाएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, और बाबा को याद करती रहती हैं, बाबा की याद के गीत बजते रहते हैं, और अभी तो बाबा की मुरली भी सुनती रहेंगी और टोली बनाती रहेंगी। तो ये माताओं को बहुत विशेषता है, खाना बनाना, टोली बनाना। भाई भी करते हैं, भाई भी यहाँ मधुबन के भाई भी बहुत प्यार से सेवा करते हैं। अच्छा आज ओम शांति, आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक टाइटल दिया है। बाबा ने कहा तुम सब महावीर और महावीरनियां हो, और फिर बाबा ने कहा कि तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं, और महारथियों की सवारी हाथी पर दिखाते हैं। और दूसरी बात बाबा ने पुरुषार्थ के लिए ध्यान खिंचवाया, बाबा ने कहा जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाएंगे। फिर दूसरा पुरुषार्थ बाबा ने कहा कि देह सही देह की सब बातों को भूलना है, अंत में भी किसी की याद ना आए। और फिर तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा करनी है, जो ज्ञान धन मिला है उसका दान भी जरूर करना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 4 फरवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। मीठे बच्चे बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सदगति हो जाएगी। आज का प्रश्न है कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है। इसका उत्तर है घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। ये नया रास्ता सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानता है। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। जब कुंभकर्ण की बात आती है तो बाबा ने खास ये चित्र बनवाया था कि कुंभकर्ण का एक बड़ा सा चित्र बना दो और ब्रह्मा कुमारी उनके ज्ञान दे रही कानों में, वो जरा सा जागता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है। तो अब बाबा हमेशा कहते थे अभी उनको ध्यान खिंचवाना है। अभी तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए भी कई रास्ते बाबा ने बता दिए हैं। तो आज का गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवानु वाची ये तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता क्योंकि इनका साकारी रूप है। उनको देवताओं को नहीं कहेंगे भगवान क्योंकि उनका साकारी रूप है। बाकी परम पिता परमात्मा का ना आकारी ना साकारी रूप है, इसलिए उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। कोई भी मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता, बाबा ही है जिसके अंदर पूरा ज्ञान है। मनुष्य कितना भी ज्ञान ले ले, लेकिन जो सृष्टि का ज्ञान है वो तो नहीं बता सकते ना। तो बाबा कहते कोई भी मनुष्य में ये ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान कोई में है ही नहीं। तो बाप आकर के जगाते हैं, हे सजनियों, गीता ना जाग सजनिया जाग, हे सजनियों, हे भक्तियों, जागो। सभी मेल अथवा फीमेल आत्माएं परम पिता परमात्मा माशुक को याद करते हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परम पिता परमात्मा है। राम अक्षर क्यों कहते हैं? बाबा ये भी राज बता रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण की भेंट में राम कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि राम क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप जिसको ईश्वर भी कहते हैं। रावण राज्य है ना, तो भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका शिव है। परमात्मा का, बाबा का असली नाम शिव है, लेकिन कई नाम रखे कर्तव्य के आधार पर। असली नाम उनका शिव है। तो अब कहते हैं जागो, हे जागो, अब नवयुग आता है। हमें याद आता है बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी कि सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते थे, प्रभात फेरी में बताते उठा स्लोगन करते थे, गीत गाते थे, जागो जागो भगवान आया है, जागो जागो नवयुग आने वाला है, ऐसे ऐसे स्लोगन होते थे, गीत होते थे। तो ऐसे ऐसे कई पता, तो लोग तो सोए हुए होते थे सुबह सुबह 6 बजे, तो सोए हुए कमरे से निकलते बाहर खड़े हो जाते थे, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सफेद पोशधारी फरिश्ते वहां से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने सेवा का एक ऐसा बहुत सुंदर साधन बनाया था। तो बाबा अभी क्या कह रहे हैं? अब कहते हैं जागो, अब नव योग आता है, पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो। अब कुंभकर्ण की नींद के लिए बाबा अपने बच्चों को भी कहते हैं और साथ साथ बाहर वालों को भी कहते हैं, दुनिया वालों को भी कहते हैं, इतने ज्ञान सुनाते हैं, कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो। कुंभकर्ण देखा है जिन्होंने पीस पाक में, हाथ खड़ा करो सबने देखा, थोड़े से हैं, वहां कुंभकर्ण का बहुत सुंदर मॉडल बना दिया। उसको तो जब मॉडल देखते हैं उसको कोई भूल नहीं सकता है। घर में भी जाएंगे, माताएं बच्चों को कहेंगी, बच्चे भी अपने माँ बाप को कहते रहते हैं, तो बाबा कहते कुंभकर्ण क्या है? अज्ञान नींद से जागना है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अब आंखें खोलो, नई दुनिया आती है। नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। ये है नया रास्ता। कौन सा? बाबा बता रहे कैसे नई दुनिया में जाना। ये घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानते नहीं है। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं वह अलग है। ये दो स्थान है। शांति धाम अपना घर है, स्वर्ग भी अपना घर है, लेकिन स्वर्ग में क्या जीव आत्माएं रहती हैं? तो बाबा कहते स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है, जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी आत्मा पवित्र हो नहीं सकती। पुण्य आत्मा भी नहीं कहेंगे, दुनिया में भल कहेंगे पुण्य आत्मा बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन बाबा कहते एक भी पुण्य आत्मा ने कुछ न कुछ तो विकार लगा ही हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं एक भी पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तो एक भी नहीं है। यहाँ कलयुग में है पतित आत्माएं और सतयुग में है पावन आत्माएं। तो बाबा कहते इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ये पवित्रता की बात है। इस समय बाप आकर के तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं पहले बाबा बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं, तुमको ज्ञान रत्न दिए तो तुम्हारा काम क्या, ये दान करते जाओ बांटते जाओ। तो बाबा कहते इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो पांच विकारों का ग्रहण छूट जाए। विकारों को छोड़ने का सहज रास्ता कि ज्ञान धन दान करते रहो तो पांच विकारों का ग्रहण छूट जाए। पांच विकारों का दान दो दो, पांच विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूट जाएगा। जैसे जब ग्रहण लगता है ना, पहले जमाने में तो बहुत था, शाम के टाइम ये कई तरह के आते थे और वो के दे दान तो छूटे ग्रहण, तो कुछ ना कुछ वो मांगते रहते थे, कुछ ना कुछ दान देते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं पांच विकारों का दान दे दो तो ये दुख का ग्रहण छूट जाए, पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। पांच विकारों में नंबर वन है काम विकार, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पुकारते रहते बाबा आओ हमको पावन बनाओ, भक्ति में भी गाते रहते हैं हे पतित पावन, पुकारते रहते, लेकिन बनेंगे कैसे वो तो नहीं जानते ना। पुकारते भी हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है, ये सुख और दुख का खेल है। ये सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते। अब जिस तन में प्रवेश किया उसको थोड़ी मालूम था कि मैं क्या था क्या बनूंगा। बहुत भक्ति पूजा किया, लेकिन शिव बाबा ने आकर के शुरू से लेकर के अंत तक उनकी बायोग्राफी बताई। उनके साथ साथ हम बच्चों की भी बायोग्राफी को बताते हैं, तो फिर इनकी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। ये सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां तुम विकार में जा नहीं सकते। बाबा तो यहां तक कहते विकारी दृष्टि भी नहीं रख सकते, क्योंकि तुम बाबा के बच्चे हो, पवित्र बन रहे हो। अगर जाता भी है तो उसके लिए बाबा हमेशा कड़ी सावधानी देते रहते हैं ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां तुम विकार में नहीं जा सकते हो। तुम ब्राह्मणों का ये एक ही जन्म है, इस जन्म में ही पवित्र बनना है ना। देवता वर्ण में तुम कितने जन्म लेते हो? देवता वर्ण में कितने जन्म लेते हैं? बाबा ने कहा 20 जन्म। 20 21वां ये ब्राह्मण कुल का है, ये भी ईश्वरीय कुल उसमें जमा हो जाता है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का ये एक अंतिम जन्म है जिसमें ही पवित्र बनना है। तो बाबा बता देते हैं कि ब्राह्मण जन्म का जो अंतिम जन्म है इसमें ही पवित्र बनना है, फिर जाकर के देवता बनेंगे। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बाप कहती हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। ये एक ही जन्म पवित्र बनना है। बाबा कहते सारा कर्म तो पता ही नहीं होता है, केवल यही ब्राह्मण जन्म है जिसमें बच्चों को पवित्र बनना है। ये एक ही जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता ही नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। पावन थे अब पतित बन गए हैं। पतित हैं तब तो पुकारते हैं, तब तो बुलाते ना, दुखी होते तब तो बुलाते, पतित हैं तब तो बुलाते ना। तो बाबा कहते पतित हैं तब तो बुलाते हैं, लेकिन पतित किसने बनाया? फिर बाबा पूछते भी हैं, अच्छा बन गए पतित, लेकिन पता है कि किसने बनाया? पतित किसने बनाया? रावण की आसरी मत ने। अब किसने बनाया? रावण की, एक रावण ने। बाबा ने कहा आसरी मत। आश्री मत में कितनी बातें आ जाती है, पांच विकार है, मन मत है, कई बातें हैं। रावण की आश्री मत ने, सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से और दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर के ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है। ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान जल डालते हैं जिससे आत्मा शीतल हो जाती है। ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सदगति करनी पड़े। बाबा कहते एक नहीं, सबकी सदगति करता हूँ, लेकिन जो ज्ञान सुनते हो ज्ञान से पुरुषार्थ से अपे कर लेते हैं बाबा की मदद से, जो नहीं करते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सबकी सदगति करना पड़े, जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम। जो पढ़ेंगे सतयुग में जाकर के ऊंच पद पाएंगे, और बाकी तो क्या, आत्मा शांति धाम में चले जाएंगे, वहां बैठी रहेंगे, कुछ करना ही नहीं है। बाकी सब चले जाते हैं शांति धाम में। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है, बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात नहीं है। मनुष्य तो लाखों वर्ष क्या क्या कह देते ना, तो बाबा कहते लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, क्या कहते हैं? मुझ बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भाव अक्षर तो प्रसिद्ध है ना, लौकिक में भी गीता में भी बताते हैं और सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या वो तो कुछ नहीं जानते ना। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव अक्षर तो प्रसिद्ध है, भगवानो वांछे कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कभी स्त्री का कभी पुरुष बनती है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। मनुष्य आत्मा पाठ बजाती रहती है भिन्न भिन्न रूप लेकर के, लेकिन बाबा जो है, भगवान जो है, वो कभी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। ये ड्रामा में नोंद है, एक जन्म न मिले दूसरे जन्म से। पूर्व जन्म में क्या थे, अभी क्या है, अभी इस जन्म में भी किसी का किसी से कुछ नहीं मिलता। तो बाबा कहते बच्चों के अनेक जन्म जो हुए 84 जन्म, एक जन्म भी दूसरे जन्म से नहीं मिलता है। एक जन्म न मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा ये जन्म रिपीट होगा, यही एक्ट यही फीचर्स फिर लेंगे। ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता है। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं बता सकते ना कैसा था। जैसा था इतना सुंदर शरीर वैसा ही मिलेगा। तो बाबा कहते जैसा जो कल्प पहले मिला वही मिलेगा। वह आत्मा भी अभी यहाँ है, तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे, हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है। जब ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया था ना, तो बाबा ने इसमें बहुत सारी करेक्शन किया, इतनी करेक्शन किया, फिर भी बाबा कहते हैं कि कहाँ सतयुग के लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और कहाँ यहाँ के, बहुत अंतर होगा। लेकिन चित्र बनाना तो पड़ता है दिखाने के लिए, समझाने के लिए और रखने के लिए। फिर भी वो जो फीचर्स हैं वो तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, बनेंगे फिर भी वही, फिर कल्प के बाद चित्र बनाएंगे फिर वो वैसा ही बनेगा, जैसा बनाया वैसा ही बनेगा। लेकिन उनके ओरिजिनल फीचर्स जो हैं वो तो सतयुग में तो बहुत सुंदर होंगे। बाबा ने ये चित्र भी क्या है, ट्रांस मैसेंजर जाती थी, संदेशियां जाती थी, देख के आती थी, फिर आके बनवाते थे, फिर बाबा करेक्शन करते थे, फिर भेजते थे, फिर आकर के बाबा श्री बाबा करेक्शन करते थे, फिर भेजते थे, ऐसे चलता था। तो बाबा कहते हैं फिर भी बनेंगे तो वही ना, ये बातें नया कोई समझ ना सके। उनको ये बातें बताओ ना, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं, हालांकि बहुत सुंदर बनाए हुए, लेकिन उनको बताएंगे तो समझ ही नहीं सकेगा। ये बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे बरोबर। हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ये हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं। अभी देखो ना क्या बाबा का अंतिम जन्म का भी फीचर्स इतना जबरदस्त, इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी बाबा की पर्सनैलिटी, और बाबा को देखते ही दूर से इतना अट्रैक्शन। अभी बनना है नारायण, लेकिन वो तो फीचर्स नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उस पिक्चर में दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चे जानते हो मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, ये शरीर भी सब पतित है। अब यहाँ के तत्व तमो प्रधान है, तमो प्रधान तत्व तो शरीर भी तमो प्रधान, सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते, इतना सुंदर उनके फीचर्स। अब वैसे भी किसी बच्चे को श्री कृष्ण बना के बिठा दो तो कितना अट्रैक्ट करता है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे। अब भारत में गोरे हैं, कहाँ हर कंट्री में अपने उनका नेच उनका कल्चर अलग होता है, उनके फीचर्स अलग होते हैं, लेकिन वो भी क्या है, कितने प्रकार के, किस तरह से दुखी हैं, विकारी हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां हैं, लेकिन बाबा जी तो उनको देवता थोड़ी कहेंगे, गोरे होने से देवता तो नहीं कह सकते ना। तो बाबा कहते हैं भल विलायत में मनुष्य गोरे हैं परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, दैवी गुण तो है नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है, अनगिनत हीरे जवाहरात धन आदि मिलता है। ये पढ़ाई से कितनी प्राप्ति होती है, अनगिनत हीरे जवाहरात धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होंगे, यहाँ तो एक हीरा मिल जाए बढ़िया, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपेंसिव, ये है वो, पता नहीं कितना वर्णन करते रहेंगे, वहां तो नेचुरली हीरे जवाहरात है, इतने हैं को गिनती नहीं कर सकते। तो वहां बाबा कहते हैं वहां तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अब ये सब गुम हो गया है, तुम कितने धनवान बनते हो, अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है। इतनी बड़ी कमाई करने के लिए बाबा कहते हैं मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है। ये पुराना शरीर छोड़ अब वापिस अपने घर जाना है, बाप अभी लेने के लिए आए हैं, कभी कहीं जाना होता है ना, वेट करते हैं फलाना आएगा हमको लेके जाएगा, फलाना हमको वहां से वहां ले जाएगा। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए, अभी बाप आए हैं ले जाने के लिए, हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है, नहीं तो वार्निंग भी दे रही, बाप को याद करो पावन बनो, नहीं तो कयामत का समय है। बाबा दोनों बातें बिता रहे, इजी वे है बाप को याद कर लो, नहीं करते हैं तो फिर बाबा ने याद दिलाया, नहीं तो कयामत का समय है, सजाएं खाकर वापिस चले जाएंगे, हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना। बाबा हमेशा कहते थे बच्चों को कि बच्चों को तो सजाएं खानी नहीं चाहिए, क्योंकि बाप उनका बाप भी है, धर्मराज भी है, हिसाब किताब यही चुकतू कर लो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो हिसाब किताब सबको चुकतू करना ही है, भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते थे। भक्ति मार्ग पहले बहुत समय पहले था, अंग्रेजों के टाइम से पहले वाराणसी में काशी कलवट का एक कुआं बनाया हुआ, वहां जाकर के वो क्या करते थे, अपना सिर जो है तलवार से काटे, ऐसे जंप करते तलवार से सिर कट जाता था, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर इसको बंद करा दिया था। तो बाबा ने इसका राज बताया, काशी कलवट खाया, इस जन्म के जो पाप किए वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर नए जन्म में जाकर के नए सिरे से हिसाब किताब शुरू होता है, लेकिन मुक्ति धाम में तो कोई नहीं जा सकता। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी तो कोई मुक्ति को नहीं पाते, वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग, इसमें जीव घात करने की दरकार ही नहीं रहती। जीव घात तो छोड़ो, बाबा हमेशा कहते थे कभी भी अपने आप को दुख भी नहीं देना, जीव घात का तो संकल्प ही कभी नहीं आना चाहिए, कभी अपने आप को दुख भी नहीं देना है, बाबा मिला तो खुशी में रहो, बाबा ने इतना दिया तो उसके स्वरूप में टिको ना। तो बाबा कहते हैं इसमें जीव घात करने की दरकार ही नहीं रहती, वह है जीव घात, फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावे, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतु हो फिर चालू होता है। भक्ति में भावना है, वो मुक्ति को पाने के लिए इतना बड़ा कठोर कदम उठा लेते, लेकिन उनका पुराना हिसाब किताब खत्म होके फिर नए में सिरे शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तो काशी कलवट का कोई मुश्किल साहस रखते, अभी तो ये लॉ बन गया, कोई कर ही नहीं सकता, साहस तो छोड़ो, मैं वहां पर जाके देख सकते हैं लेकिन ऐसा कदम कोई उठा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है, बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते, आत्में तो आती रहती हैं, फिर वापिस कैसे जाएंगी, आत्में अभी तक भी आ रही हैं। बाबा ने कहा जब सब लास्ट तक आ जाएंगी फिर वापिस जाना शुरू होगा, आत्में तो आती रहती हैं, फिर वापिस कैसे जाएंगे, बाप ही आकर के सर्व की सदगति कर वापिस ले जाएंगे। सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सत्युग में आयु बड़ी होती है, वहां तो दुख की बात ही नहीं है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कैसे, वहां शरीर छोड़ते टाइम भी कोई तकलीफ नहीं है, बाबा ने कहा जैसे सर्प है क्या करता है, वो एक खाल छोड़ करके दूसरा ले लेता है, तो वहां पर भी शरीर छोड़ते टाइम ना छोड़ने वाले को दुख होता है ना उनके देखने वाले को दुख होता है, उनको पता है कि अब टाइम आ गया ये छोड़ करके दूसरा ले लेंगे। तो बाबा जैसे सर्प का मिसाल है, उनको मरना नहीं कहा जाता, सतयुग में मरना शब्द ही नहीं है, यहाँ कलयुग में तो कहे बस हर समय वो मर गया, लड़ेंगे तो कहेंगे तुमको मार दूंगा, तुम मर जाओ, ऐसे से क्या क्या शब्द बोलते ना। तो बाबा कहते सतयुग में मरना शब्द भी नहीं होता है, उसको मरना नहीं कहा जाता, दुख की बात ही नहीं है, समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ है, इस शरीर को छोड़ दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही डाल, सतयुग में जो करते हैं उसका अभ्यास यहाँ डालेंगे, वो जाकर के नेचर बन जाएगी। तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहाँ ही करना है, हम आत्मा है, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नई खाल लेंगे। बाबा सर्प का उदाहरण दिया ना, तो बाबा कहते नई खाल मीन्स नया शरीर लेंगे, ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 जन्म लेती है, मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया, बाबा ने समझाया 84 जन्म ना समझने के कारण 84 लाख कह दिया है, बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भित्तर कह देते, मनुष्य के लिए तो कहा 84, चलो 84 लाख, लेकिन बाबा के लिए क्या कह दिया ठिक्कर भित्तर, पता नहीं क्या क्या कह दिए, कितनी गिलानी कर दिए, बाप के लिए तो कितना ठिक्कर भित्तर कह दिया है, उसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। मनुष्य स्वच्छ बुद्धि थे, अब बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, स्वच्छ बनते हो बाप की याद से, बाबा रास्ता बताते हैं स्वच्छ बुद्धि कैसे बनेंगे बाप की याद से। बाप कहती हैं अब नवयुग आता है, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है, ये वही मुस्लिमों वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश एक धर्म की स्थापना हुई थी, महाभारत में दिखाते ना, तो बाबा कहते वो दृश्य अभी चारों ही तरफ चल रहा है, चारों तरफ देखो एक दूसरे को धमकी देते, ये करेंगे वो ही करेंगे, इधर देखो तो इधर देखो कुछ न कुछ धमकियां देते ही रहते ना। तो बाबा कहते हैं ये वही मुस्लिम वाली लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश एक धर्म की स्थापना हुई थी, तो जरूर भगवान भी होगा ना, महाभारत में दिखाते ना एक तरफ भगवान है एक तरफ कौरव है, तो बाबा कहते जब ऐसा समय है तो जरूर भगवान भी तो होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकेंगे, ज्ञान का सागर निराकार या श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को तो ये ज्ञान होगा ही नहीं, ये ज्ञान ही गुम हो जाता है, तुम्हारे में भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। बाबा के तो उसमें भी ज्ञान गुम हुआ, तुम सत्ययुग में हो, तुम्हारे में भी ज्ञान नहीं होगा। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग में आते हैं फिर तुम चित्र बनाते हो। श्री कृष्ण को भी ये ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारे में भी भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम ही पूजे सो पुजारी बनते हो। कला कम होती जाती है और आयु भी कम होती जाती है। क्यों आयु कम होती है? क्योंकि बाबा कहते भोगी बन जाते हो, वहाँ है योगी। ऐसे नहीं, अब सत्ययुग में सब योगी है, फिर बाबा राज बता रहे, ऐसे नहीं कि वो किसी की याद में योग लगाते हुए। योगी बनते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर योग नहीं लगाते हैं। ऐसे नहीं कि वो किसी की याद में योग लगाते हैं, वहाँ तो है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते, उसकी महिमा में उसको योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप से योग लगा रही है। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, सतयुग में नहीं है। सतयुग में तो संपन्न है ना, तो बाबा कीर्ति करेक्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है, सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई योगेश्वर को हो, पवित्र आत्मा को ना कोई समझे, ना कोई समझ सकता, ना वहाँ पर कोई कहते हैं। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहाँ तो प्रिंस बनती हैं। तो तुम्हारा पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए। कौन सी अवस्था? जो सिवाय बाप के और कोई की शरीर भी याद ना रहे। बाबा पक्का करा रहे, लास्ट में ऐसी अवस्था हो सिवाय बाबा की और कोई की याद ना आए। शरीर से और पुरानी दुनिया से भी ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते। सन्यासियों ने ममत्व मिटाने के लिए क्या किया? घर बार छोड़ा, जंगलों में चले गए। और अभी तो सभी सन्यासी जंगल में है ही कुछ नहीं, क्या करेंगे रह के? सब शहरों में आ गए हैं, लेकिन ममत्व मिटाने के लिए प्रैक्टिस करते ना। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। ब्रह्म को ही ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, ब्रह्म में कोई लीन हो ही नहीं सकता है। राइट तो मैं हूँ, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। यात्रा में भी जाते ना, इधर गए उधर गए, डाइवर्शन होता है, करने जाते यात्रा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। तो बाबा भी कह रहे हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसी भी देह की याद ना आए। फिर बाबा ने आज देखो बड़ा टाइटल दे दिया, किसी भी देह को याद करते हैं तो बाबा ने कहा ये तो जैसे कि भूतों की याद, क्योंकि ये देह जो है पांच तत्व है ना, शरीर को वैसे ही भूत कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं किसी भी देह की याद ना आए, ये है भूतों की याद, भूत पूजा। देह को याद किया, देह की पूजा की, तो बाबा कहते भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, तुमको याद करना है मुझे। इन आंखों से देखते हुए भी बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाए। कई बार क्लास करते ना धर्म राज की सजाओं से कैसे छूटेंगे, तो बाबा ने आज सहज तरीका बता दिया कि बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है, बाबा ये भी बता रहे हैं, सहज नहीं है, बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, अब बाबा ये भी बता दिया, प्रजा बनना तो बहुत सहज है, उसमें भी साहूकार प्रजा और गरीब प्रजा कौन कौन बन सकता है? आप पुरुषार्थ करेंगे तो साहूकार बनेंगे, नहीं करेंगे तो गरीब बनेंगे। उसमें भी साहूकार प्रजा गरीब प्रजा कौन कौन बन सकती हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से। कहाँ जाना है फिर कहाँ बाबा को याद करना है, बाप और घर से। जैसे एक्ट्रेस का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर की तरफ चली जाती। ड्रामा में भी लास्ट सीन चल रहा होता ना, उनको रहता है कि अभी 2 मिनट में 5 मिनट में पूरा होगा बस, फिर इसके बाद तुम घर चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे एक्ट्रेस का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर में चली जाती है, ये है बेहद की बात। वह होती है हद की आमदनी और ये है बेहद की आमदनी। अच्छी एक्ट्रेस की आमदनी तो बहुत होती है। तो बाप कहती हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना। एक्ट्रेस भी जो हीरो एक्ट्रेस होते हैं उनकी कितनी आमदनी, जो बीच में थोड़ा सा रोल बजाते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे पाई पैसे का दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी एक्ट्रेस की आमदनी भी बहुत होती है, ये है बेहद की आमदनी। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशिक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक हैं एक माशुक बाप के, उनको ही हम सब याद करते हैं। और बाबा कौन है, आज बाबा ने कहा ये वंडरफुल मुसाफिर। एक तो बहुत बड़ा माशुक है, फिर बाबा कौन है, ये वंडरफुल मुसाफिर है। ऐसा मुसाफिर वो आता है सबको साथ ले जाता है, वंडरफुल मुसाफिर है ना। इस समय आए हुए हैं सबको दुखों से छुड़ा के सदगति में ले जाने के लिए। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक। वह एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं होती। वो आशिक जो लौकिक के होते हैं ना, वो क्या होता है, विकार की बात नहीं, बस एक दो को देखते रहेंगे एक दो को देखते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सच्चा माशुक है, इनको याद करने से बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे, विकार की बात नहीं। उनको कहेंगे देह अभिमान का योग, वह भूतों की याद हो गई। मनुष्य को याद करना माना पांच भूतों को प्रकृति को याद करना, क्योंकि शरीर भी तो पांच तत्वों से बना हुआ ना। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल मुझे याद करो, मेहनत है ना, और फिर दैवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना ये भी आसरी अवगुण है। बहुत होते इसने ऐसा किया, अच्छा कोई बात आगे चल के दिखाएंगे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करो, कोई से भी बदला लेना ये भी आसरी अवगुण है। सच्चू में तो होता ही है एक धर्म, बदले की तो कोई बात ही नहीं होती। वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई स्थापन कर नहीं सकता। सूक्ष्म वतन देवताओं को भी कहेंगे फरिश्ते। सूक्ष्म वतन में जो देवताएं हैं वो सब फरिश्ते हैं, लेकिन सतयुग के अंदर जो है वो सब देवताएं हैं। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर क्या बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापिस। तो बाबा कहते हैं फिर वापिस जाएंगे नई दुनिया में, आकर के दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते, राज बता दिया, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर जाएंगे अपने घर, फिर अपने घर से फिर जाएंगे सतयुग में, दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे ले। पहले अपने को पहचानना है, बाबा का बच्चा बनेंगे तब तो वर्षा लेंगे ना। ये प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना। बाबा के टाइम पर कोई आया था जैनी, उसने कहा, जब बातचीत करते हैं तो उसने कहा कि हमारा जैन धर्म बहुत पुराना है, तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, वास्तव में महावीर आदि देव ब्रह्मा को ही कहते। जैनी महावीर को आदि देव को मानते ना, तो बाबा ने कहा अब वास्तव में महावीर आदि देव ब्रह्मा को कहते है ही ब्रह्मा, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख लिया। ब्रह्मा ही तो महावीर है, पुरुषार्थ भी सबसे अच्छा करता है, तीव्र पुरुषार्थी तो यही है ना, तो उसका नाम महावीर रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो। एक हो महावीर, दूसरा हो बहादुर, तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर और महावीरनिया तुम हो। सच्चे सच्चे कौन हो? महावीर और महावीरनिया तुम हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम है, कौन सा नाम है? शिव शक्ति। शेर पर सवारी है, शेर पर सवारी कि नहीं? देखा है शेर? शेर को देख के तो डर जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं शेर पर सवारी में शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है, और महारथियों की सवारी किस पर है बताओ भाई? महारथियों की सवारी है हाथी पर, बहनों की सवारी शेर पर, और भाइयों की सवारी हाथी पर। तो तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है और महारथियों की सवारी हाथी पर है, फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। सवारी तो कहाँ पर है लेकिन मंजिल बहुत भारी है, फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ भी कर लो विकर्म विनाश करने का, बाबा के एक बाप की याद के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य पाते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का सन्यास। कितना सही, कुछ नहीं करना, बुद्धि में यही कि अब हमें अपने को घर जाना है, मैं आत्मा हूँ, अब ये दुनिया पुरानी है, यहाँ से जाना है तो डिटैच होना। इसको बाबा कहते हैं, आत्मा कहती है मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का सन्यास। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे सहज रहे। घर बार में रहते पवित्र बनना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज का वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस समय, इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है, जो चाहे जैसे चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसे चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार रूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते। वैसे भी देखते ना, खेल कूद में कुछ भी होता है एक सेकंड का ही होता है। एक सेकंड के अंदर पासा पलट गया तो विजयी बन जाते हैं, उनका नाम विजय लिस्ट में आ जाता है। तो बाबा भी इसलिए कह रहे हैं, इस एक सेकंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। बाबा के बच्चे क्या, कोई कहां से कोई कहां से, एक ही परिवार के हो गए ना। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। दुनिया में ना दो रहेंगे ना, सारा टाइम टिक 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 करती रहेंगे। और यहाँ बाबा के घर में सब इकट्ठे रहती हैं, माताएं आराम से रहती हैं, प्यार से रहती हैं। दुनिया में लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती। और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। बाहर वाले भी आते ना कि अच्छा इनके पास इतनी बहने हैं, इतने सब साथ रहते हैं, कोई किस देश का, कोई किस देश का, कोई किस कल्चर का, तो उनको देख के खुशी होती है, सेवा होती है। तो माताएं भी बहुत प्यार से करती है ना, अच्छा ओम शांति, ओम शांति। अभी योग के बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे। डबल विदेशी भाई बहने हाथ खड़ा करें। ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू रेज योर हैंड। सबके लिए ताली बजाओ। अभी तो बहुत आने वाले हैं इस ग्रुप के अंदर। आपको पहले से बता दें कि ये जो ग्रुप बाबा मिलन का है, डबल विदेशी भाई बहनों से ओवर ओवर फुल है। इसके दो कारण हैं कि सभी डबल विदेशों के अंदर जो सेंटर्स हैं, सेंटर संभालने वाले नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, सारी सीनियर सिस्टर सब के सब आ रहे हैं, और भी बाबा के लाडले बच्चे आ रहे हैं। बाबा तो सबको प्यार से स्वीकार करते हैं, बाबा कहते वेलकम। लेकिन नेक्स्ट ग्रुप जो है वो काफी बड़ा ग्रुप है, उसमें सब बाबा के बच्चे बाबा के दिल में समाई जाएंगे। बाबा सबको अपने प्यार में समाई लेते हैं। तो योग के बाद आफ्टर मेडिटेशन all the double foreign sisters brothers will stay back. Today's program will be announced. और इसके साथ साथ हमारी मोहिनी दीदी भी पहुंच चुकी है न्यूयॉर्क के से, वो भी शांतिवन में है. जयंती बहन भी आ चुकी है और सारे सीनियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स भी पहुंच चुके हैं और कुछ कल परसों तक पहुंच जाएंगे. तो उनकी मीटिंग होने वाली है, उसके लिए सब आ रहे हैं. जैसे अपनी वार्षिक मीटिंग होती है ना, ऐसे उनकी भी सेवाओं की एनुअल मीटिंग होती है जिसमें सभी टीचर्स बहने आ रहे हैं. अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम बताया जाएगा. ये पांडव भवन के आंगन में किसी का चश्मा मिला है, जिस किसी का हो तो योग के बाद मेरे से स्टेज के पीछे से ले सकते हैं. अच्छा, ओम शांति.